यरमिया अध्याय 22। परमेश्वर ने यरमिया से कहा कि वो राजा के घर में जाकर उसका संदेश दे। ये संदेश पिछले संदेश से आगे का है। यरमिया अध्याय 22 पद 2 से लेकर 5 तक। हे दाऊद की गद्दी पर विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों से आया करते हैं, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और लुटे हुओं को अंधेर करने वालों के हाथ से छुड़ाओ और परदेशी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, न इस स्थान में निर्दोषों का लहू बहाओ। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। परंतु यदि तुम इन बातों को ना मानो तो मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूं, यहोवा की ये वाणी है कि ये भवन उजाड़ हो जाएगा। इस अंतिम समय में भी परमेश्वर राजा को मुक्ति का आमंत्रण दे रहा है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख दी है, वे मौत के कगार पर खड़े हैं। परंतु परमेश्वर अब भी कहता है, देखो यदि तू वही करो जो उचित है, यदि तेरा न्याय धार्मिकता का हो और तू अनाथ को सहारा दे, विधवा को, गरीब को शोषण से मुक्त करो, तो मैं तेरे राज कुल को बढ़ाऊंगा अर्थात तेरा राज्य, और वहां ये राजा होंगे जो प्रवेश द्वार से आएंगे और रथों पर सवारी करेंगे। तुम्हें केवल पूरी बातें माननी होगी और वो भी इसी क्षण। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर उन्हें अंतिम अवसर दे रहा है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि बुराई और भ्रष्टाचार ने इतनी गहरी जड़ पकड़े होता है और लालच इतनी गहरी जड़ पकड़ लेती है कि फिर लौट आना असंभव हो जाता है। मेरी रुचि का विषय यहां यह है कि परमेश्वर की पुकार सच्चे न्याय से संबंधित थी। गरीब, अनाथ, विधवा आदि का शोषण किया जा रहा था। ये कैसी ध्यान देने योग्य बात है कि परमेश्वर गरीबों का, अनाथों का या विधवाओं का विषय उठाता है, क्योंकि वे उसे पुकारते हैं। यदि वे न्यायपालक हो, वे यदि न्याय और धार्मिकता का व्यवहार करें और शोषणकर्ताओं से शोषित वर्ग को मुक्त कराएं, तो परमेश्वर के आने वाले दंड को रोका जा सकता है। अजनबी और अनाथ और विधवाओं के साथ अत्याचार न किया जाए, यदि वो ऐसा करें तो वे वहां कैसे रहेंगे और राजाओं का आना जाना होता रहेगा। परंतु यदि ऐसा न हुआ तो परमेश्वर अपनी शपथ खाकर कहा था, इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर अपने से बड़े की शपथ नहीं खा पाता है, इसलिए वो अपनी खुद की शपथ खाता है। और यदि परमेश्वर ने अपनी शपथ खाई है तो वो जो करेगा वो अटल होता है। हमेशा शपथ कही हुई बात की पुष्टि के लिए खाई जाती है। जब कोई मनुष्य कोई प्रतिज्ञा करता है तो वो अपने से बड़े की शपथ खाता है। आपको ध्यान होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने शपथ खाने के लिए मना किया है। मती अध्याय 5:34-37 पद, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वो उसके पांवों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है, अर्थात अपने वचन के पक्के होना। बात बात पर शपथ लेने वाले मनुष्य न बनो। मैं सच कह रहा हूं, मेरी मां की कसम, आसमान की कसम आदि जो भी हो। प्रभु कहता है कि हमें अपनी बात की पुष्टि के लिए कोई शपथ या कसम नहीं खानी है। हमारा हां कहा हां ही हो और ना कहा हुआ ना ही हो। किसी बड़े की शपथ खाने की आवश्यकता ही ना पड़े। परमेश्वर जब मनुष्य को समझाना चाहता है कि उसने जो कहा है अब टलेगा नहीं, तो वो शपथ खाता है। और क्यों? क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए वो अपने ही नाम की शपथ खाता है। और तब संपूर्ण जगत में उससे सच और अटल कोई बात नहीं रह जाती है। यदि आप कहे हमें विश्वास है कि कल सुबह सूरज उदय होगा, नहीं, आपको ऐसा विश्वास नहीं हो सकता। परंतु यदि परमेश्वर ने कह दिया है तो ये अवश्यंभावी है, और यदि परमेश्वर अपनी शपथ खाकर कहे तो फिर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई उसे टाल नहीं सकता। कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता, संदेह का लेश मात्र स्थान नहीं रह जाता। इस प्रकार ये परमेश्वर का वचन दृढ़ है, बस ऐसा ही होगा, यही तुम्हारा अंत है। मैंने अपनी शपथ खाई है, मैं इस स्थान को उजाड़ दूंगा। यरमिया अध्याय 22 पद 6। क्योंकि यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यूं कहता है, तू मुझे गिलाद देश सा और लबनोन के शिखर सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय मैं तुझे मरुस्थल व एक निर्जन नगर बनाऊंगा। गिलाद और लबनोन जैसा मनोरम देश, परंतु मैं तुझे निश्चय ही उजाड़ दूंगा। यरमिया अध्याय 22 पद 7 से लेकर 9 तक। मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा, वे तेरे सुंदर देवदारों को काटकर आग में झोंक देंगे, और सब जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछेंगे, यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है? तब लोग कहेंगे, इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत की और उनकी उपासना भी की। वो स्थान जो कभी महिमा से पूर्ण और सौंदर्य का प्रतीक था और विभव और रमणीयता में पृथ्वी का गर्व था, अब निर्जन और उजाड़ और जंगल हो जाएगा। तब राहगीर पूछेंगे, परमेश्वर ने इसकी ये दशा क्यों की, ऐसा उजाड़ क्यों किया? उत्तर यही होगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की वाचा को तोड़ा और अन्य देवताओं की उपासना की। परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र से वाचा बांधी थी, जिसके अधीन वे उसकी प्रजा थे और वो उनका परमेश्वर था। इस वाचा के अनेक कारण थे, उसके अनेक पक्ष थे, उनमें से एक था सबत का दिन। ये एक विशेष वाचा थी जो परमेश्वर और इस्राएल के वंशजों के मध्य बांधी गई थी कि वे सबत के दिन का निष्ठा से पालन करेंगे। वाचा का दूसरा पक्ष था पुरुषों का खतना, तीसरा पक्ष था पशु बलि द्वारा परमेश्वर के निकट आना, क्योंकि पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर के निकट नहीं आ सकता था, क्योंकि ये परमेश्वर का कहना था। इब्रानियों अध्याय 9 पद 22, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। अतः परमेश्वर ने अनेक बलिदानों का उल्लेख किया था, मेल बलि, होम बलि आदि। यहां परमेश्वर की शिकायत है, तुमने वाचा तोड़ी है। मैं तो देखता हूं कि आज भी पूरी वाचा को निभाया नहीं जा रहा है। यद्यपि वे सबत का पालन करते हैं और डेयरी उत्पाद तथा मांस प्रयोग नहीं करते, वे खतना करते हैं। उन्होंने वाचा के उस भाग को अनदेखा कर दिया है जिसके द्वारा परमेश्वर ने उनके पापों को ढांपने की व्यवस्था की थी। वे आज कोई बलिदान नहीं चाहते हैं, वे आज लहू नहीं बहा रहे जिसके बिना परमेश्वर ने क्षमा का प्रावधान नहीं किया है। आज जो वे कर रहे हैं वो एक विचित्र सा व्यवहार है कि वे अपने कर्म कांड द्वारा तथा अपने परोपकार द्वारा परमेश्वर के निकट आने का प्रयास करते हैं। उन्होंने ये कहां से सीखा? निश्चय ही ना तो परमेश्वर से और ना ही परमेश्वर के वचन से। ये सब मनुष्य की रीतियां हैं जो उनका धार्मिक अभ्यास बनकर रह गई। और इस प्रकार वर्ष का वो सबसे महत्वपूर्ण बड़ा दिन यौम किपुर, जो वर्ष का वो दिन था जब महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर राष्ट्र के पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर को बलि देता था, आज वो दिन उनके सत्कर्मों, उनके दुष्कर्मों के बारे में मनन का दिन बन गया है। उनका लक्ष्य यही होता है कि उनके सत्कर्म उनके दुष्कर्मों से थोड़ा सा ऊपर ही निकले, क्योंकि परमेश्वर तेरे सम्मुख मेरी यही ग्रहण योग्य स्थिति है। परंतु देखिए यशया की पुस्तक में वो क्या कहता है, तुम्हारे काम परमेश्वर के सामने मैले चितड़े हैं, कैसी त्रासदी, वे पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर को मैले चितड़े दे रहे हैं, ऐसा कदापि स्वीकार्य नहीं है। अतः परमेश्वर ने कहा, तुमने वाचा तोड़ी, वे आज भी वाचा तोड़ रहे हैं। यीशु ने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। वे चाहे तो आज मसीह के लहू द्वारा परमेश्वर के पास आ सकते हैं और नई वाचा बांध सकते हैं, तब वे यहूदी नहीं रहेंगे। उनके द्वारा ये सत्य को विकृत करना है, क्योंकि वे पापों की क्षमा के लिए लहू का सहारा नहीं ले रहे हैं जो परमेश्वर की वास्तविक वाचा है। अभी उनको ये बोध नहीं है कि उन्हें इस भाग की पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। वे अपने कर्मों के प्रति क्या देते हैं? प्रेरित पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को पत्र में लिखा, इफिसियों अध्याय 2:8-9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। परंतु यहूदी कर्म कांड से ही परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जाने की आशा लिए बैठे हैं। सत्य के प्रति उनकी आंखें बंद है कि परमेश्वर किसी मनुष्य से मिलाप के लिए उसके कामों का ऋणी नहीं है। इस प्रकार आप परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के पक्ष में या स्वर्ग में प्रवेश का मार्ग कर्मों द्वारा नहीं खोज सकते हैं। लहू के बहाए बिना पापों की क्षमा है ही नहीं, और पापों की क्षमा के बिना परमेश्वर की संगति प्राप्त नहीं हो सकती है। यदि आपको परमेश्वर की संगति चाहिए तो उसके लिए धार्मिकता का आधार आवश्यक है। आज परमेश्वर ने मसीह यीशु के लहू के द्वारा एक नई वाचा बांधी है। ये कटोरा नई वाचा का मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? किसी समय का आलीशान नगर उजाड़ क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया। उन्होंने अन्य देवताओं की उपासना की और उनकी सेवा टहल की। यरमाया अध्याय 22 पद 10। मरे हुओं के लिए मत रो, उसके लिए विलाप मत करो, उसी के लिए फूट फूट कर रो जो परदेश चला गया है। जो मर गए हैं उनका दुख समाप्त हो गया है, परंतु वे जो बंधुआई में ले जाए जाएंगे उनके दुखों के लिए विलाप करो। यरमाया अध्याय 22 पद 10। क्योंकि वो लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने ना पाएगा। दो अध्याय बाद हमें ये पता चलेगा कि उनकी बंधुआई 70 वर्ष की थी। इस प्रकार लौटकर आने वालों की संख्या बहुत कम थी। अब किसको स्मरण होगा कि मंदिर कैसा था, क्योंकि बंधुआई में जाते समय वे शिशु अवस्था या बाल्य अवस्था में ही रहे होंगे। अब वे अपनी 70 के दशक की आयु में होंगे। लौटने के बाद उनमें आराधना का एक उत्साह होगा, अतः उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण आरंभ किया। ओ महिमा महिमा, ये वृद्ध जन रो रहे थे, क्योंकि वो विभवशाली मंदिर आज कैसी दरुण अवस्था में था। यरमिया कहता है कि जो मर गए उनके लिए विलाप मत करो, क्योंकि वे तो विश्राम में हैं। विलाप करो उनके लिए जो बंधुआई में ले जाए गए हैं, क्योंकि उनके कष्टों का अंत नहीं। यरमिया अध्याय 22 पद 11। शलूम के विषय यहोवा यूं कहता है, अर्थात यहो आहाज कुछ समय के लिए इसराइल का राजा था। उसे फिरौन बंदी बनाकर मिस्र ले गया था। उसके विषय यहोवा का वचन। यरमाया अध्याय 22 पद 11 और 12। क्योंकि यहूदा के राजा योशिया का पुत्र शलूम, जो अपने पिता योशिया के स्थान पर राजा था और इस स्थान से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यूं कहता है कि वो फिर यहां लौटकर ना आने पाएगा। वो जिस स्थान में बंधुआ होकर गया है उसी में मर जाएगा और इस देश को फिर कभी देखने ना पाएगा। यहो आहाज मिस्र में ही मरेगा, वो कभी लौटकर नहीं आएगा। यरमाया अध्याय 22 पद 13। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से। ये फटकार सिदकिया को है, क्योंकि उसने अधर्म के न्याय से अपना घर बनवाया था। यरमाया अध्याय 22 पद 13 में आगे लिखा है, और अपनी उपरोटी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है। राजा होने के अधिकार से उसने श्रमिकों को मजदूरी नहीं दी थी। परमेश्वर सदैव मजदूरों का पक्षधर रहा है। परमेश्वर शोषित वर्ग की सुधि लेता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि नाजायज लाभ उठाया जाए, और विशेष करके उन गरीबों से जो साधन विपन्न है। परमेश्वर धार्मिकता का न्याय चाहता है, जो अपने पड़ोस से बेगार में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देगा। यरमाया अध्याय 22 पद 13 और 14। और उसकी मजदूरी नहीं देता, वो कहता है मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार कोठा बना लूंगा, और वो खिड़कियां बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। बड़ा आलीशान मकान रहा होगा, क्योंकि उसमें देवदार की लकड़ियों की छत और सिंदूर से रंगी दीवारें थी। यरमाया अध्याय 22 पद 15 से लेकर 17 तक। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के कसम करता था, और वो खाता पीता और सुख से रहता था। वो इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वो दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की ये वाणी है, परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोषों की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और दृष्टि लगाता है। योशिया के विषय प्रशंसा का वचन कि वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी गिना गया था, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी क्योंकि वो गरीबों का न्याय करता था, अतः उसके साथ सब ठीक था। परंतु उसका पुत्र यहोयाकीम लालची था, वो लोगों का शोषण करता था। यरमाया अध्याय 22 पद 18 और 19। इसलिए योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यहोवा ये कहता है कि जैसे लोग इस रीति से कहकर रोते हैं, हाय मेरे भाई, हाय मेरी बहन, इस प्रकार कोई हाय मेरे प्रभु, वो हाय तेरे विभव कहकर उसके लिए विलाप ना करेगा, वरन उसको गधे की नाई मिट्टी दी जाएगी, वो घसीट कर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। योशिया के पुत्र यहोयाकीम पर आने वाला भयंकर दंड। यरमाया अध्याय 22 पद 20। लेबनोन पर चढ़कर हाय हाय कर, तब बाशान जाकर ऊंचे स्वर से चिल्ला, फिर अबारीम पहाड़ पर जाकर हाय हाय कर, क्योंकि तेरे सब मित्र नाश हो गए हैं, तेरे सब प्रेमी नाश किए गए हैं। यरमाया अध्याय 22 पद 21। तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा मैं तेरी न सुनूंगी। युवावस्था ही से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी समृद्धि में परमेश्वर को भूल चुके हैं। यदि परमेश्वर उनसे बात भी करता है तो उनके कानों पर जू नहीं रेंगती है। परमेश्वर कहता है, ये तो तुम्हारा स्वभाव शुरू से ही है, तुम मेरी आवाज सुनोगे ही नहीं। परमेश्वर हम पर रहम करे कि हमारी स्थिति ऐसी ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें बार बार चेतावनी दी है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें चिताया है कि हमें कैसा आचरण रखना है। हमें आत्मा का जीवन व्यतीत करना है, ना कि शरीर की अभिलाषाओं का। परमेश्वर ने हमें शारीरिक जीवन के खतरों के बारे में अनेक चेतावनियां दी है। यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो परमेश्वर ही रहम करे। यदि हम लालची लोभी ही बने रहते हैं और अपने पद का लाभ उठाकर दूसरों का शोषण करते हैं तो हमारा नाश निश्चित है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, मरकुस 10 अध्याय 42 से लेकर 44 पद, जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। परमेश्वर के राज्य में रहना ऐसा ही होता है, अपने पद का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। यदि आपको अगुवाई और प्रभुत्व का पद प्रदान है तो आपको अपने पद का दुरुपयोग अपने लाभ के निमित्त नहीं करना है। यहूदा के राजा के तुल्य अपने गृह निर्माण के लिए दुरुपयोग ना करें। यदि कोई आपके लिए काम करता है तो उसका श्रमिक अवश्य दे। यदि आप प्रधान हैं तो सबके दास अवश्य बने। लेने की अपेक्षा दें, अपने पद का सदुपयोग अभावग्रस्त मनुष्यों की सेवा में करें, और इस प्रकार आप निश्चय ही प्रभु के दास गिने जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुमसे तुम्हारी समृद्धि में बातें की, तुमने सुना नहीं, यही तो समस्या थी, तुम सुनना ही नहीं चाहते थे। तुमने तो आरंभ से ही मेरी वाणी नहीं सुनी। यरमाया अध्याय 22 पद 22 से लेकर 24 तक। तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे और तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे। निश्चय तो उस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी और तेरा मुंह काला हो जाएगा। हे लेबनोन की रहने वाली, हे देवदार में अपना घोंसला बनाने वाली, जब तुझको जचा किसी पीड़ाएं उठे, जब तू व्याकुल हो जाएगी। यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोआकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोनिया मेरे दैने हाथ की अंगूठी भी होता तो भी मैं उसे उतार फेंकता। कोनिया का दूसरा नाम यकोनिया था। उसका राज समाप्त हो गया था। वो कुछ समय ही शासन कर पाया था, केवल 3 महीने। परमेश्वर का कहना था, यहोयाकिम का पुत्र यहूदा का राजा कोनिया मेरे दैने हाथ की अंगूठी भी होता तो भी मैं उसे उतार फेंकता। यरमाया अध्याय 22 पद 25 से लेकर 27 तक। मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिनसे तू डरता है उनके, अर्थात बाबुल के राजा नबुकदनेज़र और कसदियों के हाथ में कर दूंगा। मैं तुझे तेरी जननी समेत एक पराये देश में, जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है, फेंक दूंगा और तुम वही मर जाओगे। परंतु जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं, वहां कभी लौटने ना पाएंगे। वो लौट कर आने ना पाएगा, वो वहीं मर जाएगा। यरमाया अध्याय 22 पद 28 और 29। क्या ये पुरुष कोनिया तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या ये निकम्मा बर्तन है? फिर वो वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकाल कर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी, 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 यहोवा का वचन सुन। देखिए, परमेश्वर लंबे समय से कहता आ रहा था। परमेश्वर कह रहा था, तुम सुनते नहीं हो। मैंने तुम्हारे अच्छे समय में तुमसे बातें की, तुमने नहीं सुना। अंत में यरमाया बहुत रुष्ट है। उसने उन्हें ये संदेश सुना दिया, उन्होंने सुना ही नहीं। इसलिए उसने कहा, हे पृथ्वी, 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 यहोवा का वचन सुन। वे तो सुनेंगे नहीं, पृथ्वी तू सुन ले। कभी आपने ऐसी समस्या का सामना किया है कि आप जन समूह से बातें कर रहे हो और वे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? संभव है कि आप बहुत ही रुचिकर बात बता रहे हो। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि अनेक बार मैं हार कर स्वयं से बातें करने लगता हूं, कोई सुनता ही नहीं। हे पृथ्वी, 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 यहोवा का वचन सुन ले। यरमाया अध्याय 22 पद 30। यहोवा यूं कहता है कि इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से ना बीतेगा और ना उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान व यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। ये सिदकया का अंत है, उसका कुल समाप्त हो गया। अब उसके वंश से कोई यहूदा के सिंहासन पर राज नहीं करेगा। ये वास्तव में हुआ भी, उस राजकुल की वंशावली का अंत हो गया।